ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय दिव्यता और दिव्य सेवा श्लोक संख्या 8। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पाद्येत् रतिक यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्।
आपल्या स्थितीनुसार चांगल्या प्रकारे राहणे आणि विहित व्यावसायिक करणे करीत असताना जर त्यामुळे भगवंता विषय संदेशाबाबत आसक्ती उत्पन्न होत नसेल तर तो केवळ व्यर्थ श्रमच आहे। तात्पर्य जीवनासंबंधी मनुष्याच्या ज्या निरनिराळ्या धारणा आहेत त्यानुसार त्याची निरनिराळी व्यावसायिक करणे असतात। जे लोक स्थूल शरीराच्या पलीकडे काही पाहू शकत नाही त्या स्थूल भौतिकवाद्यांना इंद्रियाच्या पलीकडे काही आहे असे वाटत नाही, म्हणून त्यांची व्यावसायिक कार्ये पराकाष्ठेच्या विस्तृत द्वापकृतीमध्ये सीमित असतात। या पराकाष्ठेची द्वापकृती वैयक्तिक स्थूल शरीराभोवती केंद्रित होते। ही स्वार्थ परायणाला सामान्यतः खालच्या प्रकारच्या पशु दिसून येते। स्थूल शारीरिक सुखाच्या दृष्टीने हा विस्तृत स्वार्थ मानव समाजात व्यक्त होतो आणि कुटुंब समाज जमात राष्ट्र अथवा संसार किंवा जगात या केंद्रीभूत होते। या भौतिकवादी लोकांच्या आवर असे मानसिक तर्कवाद आहेत जे मनोराज्याभोवती हिंडत राहतात आणि त्यांची व्यावसायिक कर्तव्य अशी असतात की ज्या योगाने शरीर आणि मन यांना मर्यादित झालेल्या स्वार्थाच्या हेतूने ते कविता तत्वज्ञान या किंवा त्याच स्वार्थ प्रेरित हेतूने कोणत्या तरी पंथात गुंतून राहतात। परंतु शरीर आणि मन यांच्या पलीकडे असा सुप्त आत्मा आहे ज्याच्या शरीरात अभाव झाला की शारीरिक आणि मानसिक स्वार्थाचे क्षेत्र परिपूर्ण नष्ट होते। प्रत्यक्ष पण अल्पज्ञ लोकांना आत्म्याच्या आवश्यकतेची काही माहिती नसते। मूर्ख लोकांना आत्म्यासंबंधी काही माहिती नसते। तसेच आत्मा हा शरीर आणि मन त्यांच्या सीमेत पलीकडे कसा आहे याचीही माहिती त्यांना नसते। त्यामुळे त्यांच्या सांसारिक कर्तव्य करण्याचे पालन करूनही ते समाधानी नसतात। आत्म्याच्या संतोषासंबंधी येथे प्रश्न उपस्थित केलेला आहे। आत्मा हा स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म मन यांच्या पलीकडे आहे। आत्मा हा शरीर व मन यांच्या कार्यक्षम व शक्तिमान तत्व आहे। आत्म्याची आवश्यकता समजून न घेता केवळ शरीर आणि मनाच्या इच्छा पुरून कोणीही सुखी होणे शक्य नाही। शरीर व मन आत्म्याची गर्वची आवरणे आहेत। जीवात्माच्या गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजे। पक्ष्याचा पिंजरा नुसता स्वच्छ केल्याने पक्ष्याला संतोष होत नाही पण स्वतः पक्ष्याच्या गरजा काय आहेत त्या मनुष्याला समजल्या पाहिजे। जीवात्म्याची गरज ही आहे की त्याला भौतिक बंधनाच्या मर्यादित क्षेत्रातून मुक्त व्हावयाचे आहे आणि पूर्ण स्वातंत्र्याची त्याची इच्छा त्याला पूर्ण करावायची आहे। विशाल विश्वाच्या भोवती ज्या भिंती आहेत त्यातून त्याला मुक्त व्हावायचे आहे। स्वतंत्र प्रकाश आणि चैतन्य यांना पाहण्याची त्यांची इच्छा आहे। ती पूर्ण स्वतंत्रता जेव्हा आत्मा परमात्म्याला परमेश्वराला भेटतो तेव्हाच प्राप्त होते। सर्व जीवाच्या हृदयात परमेश्वराविषयी सुप्त प्रेम आहे। आध्यात्मिक अस्तित्वात स्थूल शरीर आणि मन यांच्याद्वारा स्थूल व सूक्ष्म भौतिक गोष्टीच्या विकृत प्रेमाच्या रूपात प्रकट होते। म्हणून ज्यावेळी आपली जीव चेतना विकसित होईल अशा नियत कर्मात आपण स्वतःला संलग्न व्हायला पाहिजे। भगवंताच्या दिव्य लीलाचे श्रवण आणि गायन करूनच ते शक्य होत असते। जे धार्मिक कार्य भगवंताच्या दिव्य संदेशाच्या श्रवणात व गायनात आपला प्रेम उत्पन्न करण्यात मदत करीत नाही असे कोणतेही धर्म कार्य म्हणजे केवळ काळाचा अपव्यय होय। इतर व्यावसायिक कर्तव्य मग ती कोणत्याही पंथाची असो त्यांनी जीवाच्या बंधनातून मुक्तता होत नाही। मोक्षाप्रीती कार्य सुद्धा निरुपयोगी समजली जातात, कारण सर्व प्रकारच्या मुक्ततेचा जो मूळ उगम आहे त्याला जाणण्यास ते असफल होतात. स्थूल भौतिकवादी मनुष्याला प्रत्यक्ष दिसू शकते की त्याला प्राप्त झालेला भौतिक लाभ हा खर कालाने केवळ मर्यादित आहे. मग तो लाभ या जगाचा असो की परलोकातला असो, जरी तो स्वर्ग लोकात गेला तरी उत्कंठित जीवाला त्याचे कायमचे स्थान आढळणार नाही. असा हा भटकणारा जीव पूर्ण प्रेमभक्तीच्या पूर्ण शास्त्रीय प्रक्रियेने निश्चितच पूर्ण तृप्त होतो.
हरे कृष्णा. ये श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे कर्म हमने किस लिए करने चाहिए, हमारे जीवन की सच्ची सफलता क्या है, इसके बारे में यहां पर हमें ज्ञान दिया हुआ है. अब जीवन किसी को अगर सफल बनाना है तो क्या करना चाहिए. वैसे संसार में लोग इसके बारे में कई धारणाएं अपने मन में रखते हैं. कोई व्यक्ति सोचता है हमने अगर बहुत पैसा कमा लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया. कोई सोचता है कि अगर हमने बहुत समाज में ऊंचा पद प्राप्त कर लिया तो फिर हमारा जीवन सफल हो गया. कोई सोचता है कि हम बहुत प्रसिद्ध हो जाने चाहिए समाज में, अखबार में हमारा फोटो हर रोज छपना चाहिए तो हमारा जीवन सफल हो गया. पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये तीन चीजों के पीछे हर एक प्राणी भागता है. लाभ, हर एक चीज में हम भौतिक लाभ चाहते हैं. भौतिक लाभ ही सभी को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए. आदमी व्यवसाय भी करता है कोई लाभ के लिए, अन्यथा व्यवसाय क्यों करेगा. प्रतिष्ठा, फिर समाज में प्रतिष्ठा चाहता है कि लोग उसे कहें कि ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है. और फिर पूजा, कि लोग उसके सामने नमस्कार करें, उसकी पूजा करें. तो ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा सभी लोग चाहते हैं और सोचते हैं कि ये अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा. भौतिक दृष्टि से सभी लोग देखते हैं. एक महान वैष्णव कवि रहे जिनका नाम था विद्यापति. तो विद्यापति कहते हैं कि ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा जो है ये एक बूंद पानी के समान है. जब कोई आदमी रेगिस्तान में भटक रहा होता है भूखा प्यासा और पानी की खोज में है तो उसको एक बूंद पानी मिलने से उसको क्या लाभ होगा. उसकी ना तो प्यास बुझेगी ना कुछ फायदा होगा उसे. तो ठीक उसी तरह से हम तो सब आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं. हम शरीर के संतुष्टि के लिए, शरीर के प्रगति के लिए बहुत कुछ करते हैं. ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि जो भी कुछ है, जो भी आजकल लोग संसार में चाहते हैं, ये सब अपने शरीर के उन्नति से जुड़ा हुआ है. कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के प्रगति के लिए क्या करना चाहिए. ऐसा कोई नहीं सोचता है. केवल शरीर को कैसे सुधारा जाए, शरीर की सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, शरीर का यश इत्यादि भोग कैसे बढ़ाया जाए, यही बस सोचते हैं लोग. तो विद्यापति कहते हैं कि रेगिस्तान में घूमने वाला भूखा प्यासा आदमी को जैसे एक बूंद पानी संतुष्ट नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह से ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगला और ये सब चीजें, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब चीजें आत्मा को संतुष्ट नहीं करने वाली हैं. आत्मा अतृप्त रहेगी इसके लिए छोटा सा सरल उदाहरण दे सकते हैं। अगर आप बहुत भूखे प्यासे हैं और आप किसी के घर में आते हैं और वो कहते हैं कि आप भूखे प्यासे आए हो तो हम आपको ठंडा एयर कंडीशन का कमरा देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देंगे पहनने के लिए, अच्छा बिस्तर देंगे सोने के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए करता है, लेकिन जो चीज आपको वास्तव में चाहिए पानी और भोजन वो आपको नहीं देता है, तो फिर क्या लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वही चीज हमें मिलनी चाहिए, तब हम संतुष्ट हो सकते हैं, और अन्य चीज कोई मिल गई तो हम संतुष्ट कैसे हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछ रहा है कि आत्मा की आवश्यकता क्या है, आत्मा को क्या चाहिए। हर एक व्यक्ति केवल ये देख रहा है कि शरीर को क्या चाहिए, शरीर की सुख समृद्धि के बारे में सभी लोग सोच रहे हैं। तो शरीर के लिए पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि हमने प्राप्त कर भी लिया, लेकिन आत्मा की आवश्यकताओं को हमने पूर्ण नहीं किया तो फिर क्या लाभ। जो व्यक्ति भूखा प्यासा अगर आया है, उसे भोजन और पानी नहीं मिला, केवल एयर कंडीशन कमरा और अच्छा पलंग और अच्छे कपड़े मिले, तो वो तो तड़प के मर जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, सुखी नहीं रह पाएगा। तो ठीक उसी तरह से हम यहां पर भौतिक जगत में इस जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में हमें चाहिए, हमें मतलब आत्मा को, क्योंकि हम तो आत्मा है, और वो है भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम। ये भक्ति मार्ग आत्मा के लिए एक स्वाभाविक कार्य है। स्वभाव से आत्मा भगवान कृष्ण का दास है, भक्त है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, और भगवान की सेवा करने से ही हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकेंगे। जब हम दास के कार्य को छोड़कर हम प्रभु बनने का प्रयास करते हैं, भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि हम भोग करेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, तब हम अपने आप को माया के वश में रख देते हैं। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंते प्रकृति जय गुणे कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को भोगी समझता है, जो भोग करना चाहता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, तो क्या होता है, उसे ये प्रकृति बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में अटका देती है। सत असत योनि जन्मसु, अलग अलग योनियों में उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, कभी नीचे योनि में, निम्न श्रेणी के योनि में, कभी श्रेष्ठ श्रेणी के योनियों में। तो इन 84 लाख योनियों में आत्मा को भ्रमण करते रहना पड़ता है, केवल इसलिए कि वो भोग करना चाहता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है। और इस भोग प्रवृत्ति की वजह से आदमी की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वो ये भी नहीं सोच पाता है कि जितना भी हम भोग करें हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। मरते दम तक हालांकि किसी व्यक्ति को भोग करने के बाद भी सुख नहीं मिला है, फिर भी वो आदमी सोचता है कि मुझे और भोग करना है। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। हर एक व्यक्ति दुखी है मरते समय, लेकिन फिर भी अपने नजदीक जो भी लोग हैं उनको कहेगा कि और ज्यादा भोग करो, ये नहीं कहेगा कि चलो अभी भगवान की सेवा करो। विरला ही कोई ऐसे व्यक्ति पाया जाता है जो मृत्यु के समय सोचेगा कि अरे रे रे मैंने जीवन व्यर्थ किया, भगवान की सेवा नहीं की। एक व्यक्ति हमें मिले थे जो तरुण है, वो अपने दादा की बात बता रहे थे, अपने पिताजी के पिताजी। वो अपने अंतिम क्षण में थे, उनकी मृत्यु बहुत नजदीक थी, तो उन्होंने अपने पोते को बुलाया, मतलब इस तरुण को बुलाया, और बोलने लगे कि मैंने जीवन भर परिश्रम किया, जब मैं गुजरात से बंबई आया तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन मैंने दिन रात परिश्रम करके बहुत बड़ा व्यवसाय बनाया, इतने सारे फैक्ट्री खड़े कर दिए, और आज मैं यहाँ इतना प्रतिष्ठित और बड़ा आदमी माना जाता हूँ। मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मेरे बच्चों के लिए मैंने इतना अच्छा सब कुछ, सब व्यवसाय वगैरह छोड़ दिया, और सब कुछ मैंने किया जो कि लोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, वो मैंने कर लिया। लेकिन अब जब मेरे मृत्यु का समय बहुत करीब आ गया है, तो मैं सोच रहा हूं कि ये सब मैंने, मेरा समय केवल बर्बाद किया। क्या किया मैंने, क्या प्राप्त किया, इनमें से एक भी वस्तु मैं साथ में नहीं ले जा पाऊंगा, केवल सारा जीवन मैंने व्यर्थ गंवाया। जब मैं जवान था तो मैंने सोचा कि अभी भोग का समय है, पैसे कमाने का समय है, भगवान के लिए समय नहीं। जब मैं ज्यादा बूढ़ा हो गया तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरे बच्चों को सेटल कराना है, मुझे समय नहीं। लेकिन अब जब कि मेरे मृत्यु का समय आ गया है, मैं भगवान के शरण में जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता, अब मैं नहीं जा सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, तो मैंने तो मेरा सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया, तुम ऐसे नहीं करना, उसने अपने पोते को बताया। तुम अभी जवान हो, अभी से तुम भगवान में रुचि रखना शुरू करो। वास्तव में यह सही बात है, बाल्यस्तावत क्रीड़ा सप्ताह, बाल्यावस्था में व्यक्ति क्रीड़ा, खेल क्रीड़ा में बहुत आसक्त रहता है। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे लोग क्या करते हैं, दिन रात खेलना चाहते हैं, कोई उनको खिलौना दीजिए खेलते रह जाएंगे, और कुछ उनको नहीं चाहिए। तरुणस्तावत तरुण सप्ताह, जब व्यक्ति तरुण अवस्था में आ जाता है तो वह तरुणी के प्रति आसक्त हो जाता है, और तरुणी तरुण के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और इस तरह से युव अवस्था खत्म हो जाता है। तरुण तरुणी के पीछे भागता है, तरुणी तरुण के पीछे भागती है, इस तरह से तरुण अवस्था में भी भगवान के लिए कोई समय नहीं। वृद्धोस्तावत चिंता आसक्तः, अगर आदमी कोई सोचे कि ठीक है मेरी बाल्य अवस्था चली गई, युव अवस्था चली गई, अभी वृद्ध अवस्था आ गई है, तो ये वृद्ध अवस्था में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो वो भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वृद्ध अवस्था में चिंता आ सकता है, चिंता करते बैठते हैं, मुझे क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, व्यवसाय का क्या होगा, समाज का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, इस तरह से व्यक्ति अंतिम क्षण तक चिंता करते रहता है। वृद्ध अवस्था का एक गुण ये है कि व्यक्ति बहुत चिंता करता है अनावश्यक। परे ब्रह्मणी को पी न सकता है, फिर संत बताते हैं कि इस तरह से बाल्यावस्था व्यर्थ जाती है खेल क्रीड़ा में, तरुण अवस्था में तरुण तरुण के आकर्षण में समय चले जाता है, वृद्ध अवस्था में चिंता करते करते समय खत्म हो जाता है, सब अपने अपने कार्यों में आसक्त होते हैं, परे ब्रह्मणी को पी न सकता है। तो भगवान में कोई आसक्त नहीं होना चाहता है। अलग अलग जीवन के स्तरों में लोगों की आसक्ति भिन्न भिन्न रहती है, लेकिन हर स्तर में आप पूछने जाएं कि भगवान की सेवा कब करोगे, आज नहीं, अभी टाइम है, आज नहीं करेंगे। इस तरह से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यु के समय तक भगवान की सेवा को लोग टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, अभी नहीं, आज नहीं, कल, आज नहीं, कल, इस तरह से समय खत्म हो जाता है। और जो असली मूल्यवान चीज है जिससे कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है उस चीज को हम नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे झूठे सफलता की धारणा को लेकर हम ये मिथ्या स्वप्न के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे पास पैसा हो जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा, सच्चा सुख मिलेगा। तो इस तरह से व्यक्ति भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, अंत में मृत्यु आ जाती है, स्वप्न टूट जाता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है, कुछ कर नहीं सकता है उस समय। अगला जन्म फिर से उसे मिल जाता है और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। अगला जन्म जब उसको मिल जाता है तो उसको याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, फिर पिछले जन्म की वही कहानी इस जन्म में शुरू कर देता है, फिर से वही परिश्रम दिन रात, फिर से वही बात, संसार में चलो प्रगति करो, संसार में नाम कमाओ, फिर से मृत्यु, फिर अगला जन्म, फिर वही बात। इसका मतलब है कि कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतर से यही कहानी चलती आ रही है। लेकिन बहुत भाग्यशाली वो व्यक्ति है, अति अति भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसके होश ठिकाने आ जाते हैं और मनुष्य देह में वो निश्चय कर लेता है कि बहुत हो गया ये घूमना फिरना, बहुत हो गया, अभी इसको काटना है, अभी सच्चे सफलता को प्राप्त करना चाहिए। ये सब क्षणभंगुर जो सफलता है, ये सब ऐसे है जैसे कि आकाश में बादल, बादल आते हैं चले जाते हैं, कोई ज्यादा स्थायी नहीं, स्थायी रूप से रहते नहीं है। जैसे कभी कभी एक क्या कहते हैं उसको, उल्का, उल्का जानते हैं, उल्का संस्कृत में उल्का बोलते हैं, नहीं गिरने वाला तारा, उल्का करके आता है, थोड़े क्षणों के लिए चमकता है, शूटिंग स्टार बोलते हैं, मीटियर, उल्का थोड़े समय के लिए आता है, एकदम प्रकाशित हो जाता है, आकाश को प्रकाशित करता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हम सब, जितना भी बड़ा आदमी हो, जितने राजा महाराजा हुए आज तक मनुष्य जीवन के इतिहास में, जितने भी बड़े बड़े तथा कथित सफल लोग रहे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार मिलाया, जिन्होंने लाखों रुपए कमाए, बहुत प्रसिद्ध हो गए, बड़े बड़े फिल्म के अभिनेता कलाकार हुए, खेल के खिलाड़ी हुए, जितने भी प्रसिद्ध लोग हुए सब उल्का की तरह आए, थोड़ी देर के लिए चमक गए, फिर खत्म, दो क्षण के लिए। वो मनुष्य जीवन थोड़े क्षणों का है, हमें लगता है हमने 50 साल कुछ कर लिया, लेकिन 50 साल क्या है, ब्रह्मांड की अवधि, जीवन की अवधि कितनी है, करोड़ों 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 सालों की है। हम यहां अनादिकाल से करोड़ों करोड़ों सालों से यहां रहे हैं, उनमें से 50 साल 30 साल हमने कुछ चमत्कार कर दिखाया, मनुष्य समाज में हमने कोई ऐसा कार्य कर दिखाया जिससे कि लोग हमारा वाह वाह करते हैं, फिर मृत्यु आ जाती है, सब खत्म। क्या कीमत है ऐसे चमत्कार की, ऐसे सफलता की? इसको आकाश पुष्प कहते हैं। आकाश पुष्प क्या है आप जानते हैं? कभी कभी व्यक्ति को आसमान में एक फूल दिखाई देता है, कभी आसमान में फूल हो सकता है? नहीं, ये एक भ्रम है। हवा महल, हवा महल सुना है आपने? हम जब बच्चे थे तो आकाशवाणी में हवा महल करके कार्यक्रम हुआ करता था, जब छोटे बच्चे थे हम सुनते थे, हवा महल, हवा में महल, हवा में कभी महल हो सकता है? मतलब ये सब स्वप्न है। तो हमारे संसार में जितनी भी सारे चीजें हैं जो हम बनाते हैं, कमाते हैं, करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं दूसरों को, सब हवा महल, सब नष्ट हो जाने वाला है। स्वप्न में और सत्य में अंतर क्या होता है, कोई बता सकते हैं? अनुभव तो एक ही होता है। आप सोच लीजिए कि आप स्वप्न में देख रहे हैं कि कोई शेर आपका पीछा कर रहा है, और ये भी कल्पना कीजिए कि वास्तव में आप यहाँ भाग रहे हैं, स्टेशन रोड में कोई शेर आपका पीछा कर रहा है, तो दोनों अनुभवों में कोई अंतर है? हाँ, लेकिन जब आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न को अनुभव करते समय क्या आपको लगता है कि ये शेर नकली है? ऐसा लगता है? तभी तो आप नहीं सोचते हैं कि अरे ये तो स्वप्न है, क्यों डरना चाहिए। तभी तो आप इतना डर जाते हैं, भागने लगते हैं, यहाँ तक कि आपके शरीर में पसीना पसीना छूट जाता है। फिर तो जब स्वप्न टूट जाता है, आप जाग जाते हैं, आप देखते हैं कि अरे पसीना पसीना हो गया, फिर आप हंस देते हैं, अरे अरे ये तो सपना था, सपना का शेर था। लेकिन जब आप सपना देख रहे हैं, उस समय वो तो बहुत सत्य लगता था आपको, आपको ये नहीं लगा ये स्वप्न है। तो अब जब हम इस स्वप्न का अनुभव कर रहे हैं कि ये मेरा है, जनस्य मोहो यम अहम ममेति, ये मैं और मेरा, ये भी स्वप्न है। जब हम इस अवस्था में हैं तो हमको लगता है कितना सत्य है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा समाज है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा धन है, मेरी प्रतिष्ठा है, ये भी एक स्वप्न है, ये भी बंद होने वाला है ना एक दिन। कब बंद होगा ये? मृत्यु के समय। सपना कब टूट जाता है? जागने के बाद। और ये जागने का सपना कब टूट जाता है? मृत्यु के बाद। सोते हुए जो हम सपना देखते हैं वो थोड़े क्षण के लिए रहता है, और जीते हुए जो हम सपना देख रहे हैं वो 60 70 80 100 साल तक रहता है। फर्क केवल टाइम का है, ये 2-5 क्षण रहता है, ये 60 70 साल रहता है, दोनों सपना है, कोई अंतर नहीं, केवल समय का अंतर है बस। तो ये जो हम जीवन में आकर सब सपने बना रहे हैं, आगे चल के हम ये करेंगे, आगे चल के वो करेंगे, ये सब क्या है? सब झूठी सफलता है, सपने की सफलता है। अगर सपने में कोई बड़ा क्रिकेटर बन गया, या कोई एकदम नोबेल पुरस्कार जीतने वाला वैज्ञानिक बन गया, तो हम मानेंगे क्या कि वो आदमी सच्ची सफलता प्राप्त किया है? अगर कोई आपका मित्र आके आपको बोले कि मैंने सपना देखा कि मैं भारत का राजा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? अरे आपने जीवन सफल कर दिया। आप बोलेंगे ये तो सपने में राजा बने ना, तो इसका क्या कीमत है? तो जीते जी भी अगर कोई राजा बने, ये भी तो सपना है, तो उसने कहां अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है, ये भी तो स्वप्न ही है। तो सच्ची सफलता हमको ये संसार में कोई वस्तु प्राप्त करने से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ की सफलता भी स्वप्न की सफलता है, क्योंकि ये सब क्षणिक है। क्यों क्षणिक है? क्योंकि ये सब इस शरीर से संबंधित है, और ये शरीर क्षणिक है। जो वस्तु एक क्षणिक वस्तु से संबंधित होता है, वो वस्तु भी क्षणिक होता है। ये संसार की सफलता उन चीजों से संबंधित है जो कि क्षणिक है, इसलिए हमारे संसार की सफलता भी क्षणिक है, इसलिए इनमें कोई कीमत या मूल्य नहीं है। तो फिर प्रश्न ये निर्माण होता है कि सच्ची सफलता क्या है? सच्ची सफलता है आत्मा की सफलता। आत्मा की सफलता क्या है? इस समय आत्मा एक बहुत बुरी अवस्था में है। आत्मा अभी स्वप्न देख रहा है। आत्मा क्या स्वप्न देखती है, आप बता सकते हैं? इस समय आत्मा क्या स्वप्न देख रही है? आत्मा स्वप्न देख रही है कि मेरा नाम यह है, मेरे पति का नाम यह, मेरे पत्नी का नाम यह, मेरे माता पिता का नाम यह, मेरे बच्चों का नाम यह, मैं ये कार्य करता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, ये आत्मा का स्वप्न है। ये सब उपाधि शरीर के उपाधि है, आत्मा की परिचय नहीं है ये। आत्मा का परिचय एक ही है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, यही एकमात्र आत्मा की असली पहचान है। ये उसकी जागृत अवस्था है। तो आत्मा को स्वप्न से जगाना ये हमारे जीवन की सफलता है, असली सफलता। आत्मा जो अभी मिथ्या का अनुभव कर रही है, उस मिथ्या को भंग करना, उस सपने को तोड़ना और सत्य में स्थित करना। असतो मा सत्गमय, मृतो मा अमृतगमय, उपनिषद भी ऐसे बताते हैं। अंधकार से तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्ञान की रोशनी में जाना, मृत अवस्था से अमृत अवस्था में जाना। ये शरीर मृत है, आत्मा अमृत है। तो आत्मा के अस्तित्व को जब हम पहचानेंगे, ये हमारे जीवन की सफलता है। तो आत्मा का स्वरूप है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। तो जब तक हम ये संसार में रहते हुए मनुष्य देह प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना हमारे हृदय में जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर ली है, तो उसका जीवन सफल। चाहे उसने कुछ नहीं प्राप्त किया हो भौतिक दृष्टि से, बहुत गरीब है, लेकिन अगर उसने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया तो उसका जीवन सफल। अगर किसी व्यक्ति के पास संसार की सारी धन संपत्ति है लेकिन भगवान कृष्ण नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर दृष्टांत दिया करते थे इसके बारे में। वो बताया करते थे कि आपके जीवन में जो भी कुछ है वो एक शून्य के बराबर है। आपका धन एक शून्य, आपके आपका घर एक शून्य, आपकी गाड़ी एक शून्य, आपका कुटुंब एक शून्य, आपकी प्रतिष्ठा समाज में एक शून्य, आपका शरीर एक शून्य। ऐसे जितने भी चीजें शरीर में शरीर से संबंधित हमारी हैं, वो एक शून्य के बराबर है। तो एक शून्य की कीमत शून्य है। आप एक शून्य के बाद दो शून्य लगाएंगे, उसकी कीमत कितनी है? शून्य। दस शून्य लगाएंगे, दस शून्य की कीमत क्या है? शून्य। हजार शून्य? शून्य। तो कितने भी आप शून्य लगाएंगे एक के बाद एक, उसकी कीमत शून्य ही है। तो केवल अगर हमने संसार की चीजें इकट्ठे करते गए करते 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 गए, कीमत एक बड़ा शून्य, महाशून्य। तो संसार में लोग क्या समझते हैं? जो सबसे बड़ा महाशून्य कमाता है वो सबसे बड़ा सफल है। और लोग एक दूसरे की तुलना करते हैं, किसके पास बड़ा शून्य है? अरे इसके पास तो छोटा शून्य है, इसके पास बड़ा शून्य है, ये सबसे बड़ा सफल है, हैं? लेकिन ये नहीं सोचते हैं बड़ा शून्य छोटा शून्य सब शून्य है, क्या कीमत है। और जिसके पास सबसे बड़ा शून्य वो सबसे बड़ा सफल आदमी। तो प्रभुपाद कहते थे कि सब शून्यों के सामने अगर एक लगाया जाए तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर आपने एक नंबर रखा और उस एक नंबर के बाद आपने एक शून्य रखा तो वो दस हो जाएगा, उसके बाद और एक शून्य रखा तो, उसके बाद और एक शून्य रखा हजार। ऐसे आप जैसे जैसे शून्य बढ़ाते जाएंगे वैसे उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो प्रभुपाद समझाया करते थे कि हमारे दुनिया की सब चीजें ये शून्य हैं, लेकिन भगवान कृष्ण एक नंबर के हैं। तो जब आपने भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, आप उनके भक्त हो गए, तो फिर आपके पास जो भी है उनका मूल्य आ जाएगा। आपका धन, आपका शरीर, आपका कुटुंब फिर मूल्यवान हो जाएगा, क्योंकि आप इन सब चीजों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है वो अपने सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है, अपने शरीर को, अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने धन को, अपने घर को, अपने गाड़ी को, अपने कुटुंब को, अपने प्रतिष्ठा को, हर चीज को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। इसलिए ये सारी चीजें अभी मूल्यवान हो जाती हैं, जो कि पहले केवल शून्य थी, क्योंकि अभी इन सारे शून्यों के सामने एक आ गया है भगवान कृष्ण का। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही हमारे जीवन की असली सफलता है। अन्यथा जैसे यहां इस श्लोक में बताया जा रहा है, श्रम एव ही केवलम, सब कुछ केवल श्रम ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के अलावा यह संसार में आदमी जो भी करता है वो केवल श्रम है, बस। श्रम मतलब क्या? व्यर्थ परिश्रम, व्यर्थ कष्ट उठाना, निष्फल, उसका कोई स्थायी फायदा नहीं होता है। यह संसार में वास्तव में हर एक प्राणी को परिश्रम ही करना पड़ता है। कोई भी जीव परिश्रम के बिना नहीं रह सकता है। इस संसार को एक वैष्णव कवि ने इसकी परिभाषा बहुत अच्छी तरह से की है। वो कहते हैं कि यह संसार पवर्ग है। संसार शब्द का और एक अर्थ है पवर्ग, प वर्ग, क ख ग घ ङ ये क वर्ग, त थ द ध न ये त वर्ग, तो प फ ब भ म ये प वर्ग। तो संसार की परिभाषा ऐसे की गई है, ये संसार है प फ ब भ म। तो ये क्या है पांच चीजें संसार के बारे में? प मतलब परिश्रम, हर एक प्राणी को यहां संसार में परिश्रम करना पड़ता है। प्रभुपाद बताते हैं कि जंगल का राजा कौन है? सिंह। उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। जंगल का राजा सिंह नहीं सोच सकता कि मैं जंगल का राजा हूं, मैं केवल आराम से झाड़ के नीचे बैठूंगा, मुंह खोलूंगा, भोजन अंदर आ जाएगा, आएगा? उसको भी पीछे धीरे धीरे हिरण के पीछे जाना पड़ता है। हिरण जब सिंह को देखती है भागने लगती है, फिर उसको लपक के हिरण के पीछे जाना पड़ता है। कभी कभी हिरण भाग जाती है और उसको भूखा रहना पड़ता है, शेर को, सिंह को, इतना परिश्रम करना पड़ता है भले जंगल का राजा हो। तो इस बाहर क्या राजा भी है, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। तो हर एक प्राणी को, हर एक व्यक्ति को, जितना भी अमीर क्यों न हो, जितना भी गरीब क्यों न हो, सबको यहां पर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो संसार की परिभाषा प से शुरू होती है, प, फिर आता है फ, फ मतलब क्या? फेण। परिश्रम करते करते इतना परिश्रम कि मुंह से फेण निकलने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गधा जब ज्यादा वजन निकालता है या बैल जब ज्यादा परिश्रम करते हैं तो फेण निकालते हैं मुंह से। तो प फ परिश्रम का ये फल मिलता है उनको। परिश्रम, अति परिश्रम होता है संसार में। प फ ब, ब मतलब क्या? बंधन। ऐसा जब हम परिश्रम करते रहते हैं तो वैसे वैसे हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधन बढ़ जाता है। हम कल ही चर्चा कर रहे थे, कल या परसों सुबह को यहां पर, कि ये सब सृष्टि भगवान का माया जाल है। जैसे एक मकड़ी अपनी जाल फैलाती है और उस जाल में मक्खी अटक जाती है, और जितना ज्यादा मक्खी वहां पर संघर्ष करती है उस जाल से मुक्त होने के लिए, उतना ज्यादा वहां पर वो अटक जाती है। देखिए कितनी सुंदर सृष्टि वो रचना की है मकड़ी में, कि जितने ज्यादा वो संघर्ष करेगी मक्खी ज्यादा अटक जाएगी। तो ठीक उसी तरह से भगवान ने यह सृष्टि की रचना ऐसे की है, उनका माया जाल इस तरह से बनाया है कि जब बद्ध जीव इसके अंदर पफ करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर निकालते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा और बंध जाते हैं। क्योंकि अज्ञान में जब वो परिश्रम करते हैं, वो पाप और पुण्य करते हैं, और जैसे कल शाम को हम चर्चा कर रहे थे, पाप और पुण्य दोनों क्या करते हैं, हम बंधन का कारण बन जाते हैं हमारे लिए। इस तरह से तीसरा ब, परिश्रम, हेण और बंधन, बंधन हो जाता है, हम बंधे जाते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में। और बंधे जाने का मतलब है कि हमको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, बुढ़ापे का सामना करना पड़ेगा, बीमारी का सामना करना पड़ेगा, पुनर्जन्म का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब डरावनी चीजें हैं, कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए भ, भ मतलब भय, तो प फ ब भ, भ मतलब भय। यह संसार भय का जगत है, हर एक प्राणी यहां पर भयभीत रहता है। आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं, किसी भी प्राणी को जानते हैं जो भय से मुक्त है, आप जानते हैं? अगर एकदम अंधेरा हो जाए, बाहर जाने के लिए भी लोग डरेंगे, भूत आएगा, चोर आएगा, कुछ होगा। हर एक प्राणी, कीड़े से लेकर पक्षी से लेकर राजा से लेकर रंक तक, सभी लोग डरते हैं, सभी लोग भय के वश में हैं। तो प फ ब भ और अंत में म, म मतलब मृत्यु, मरण, सब कुछ खत्म। तो यह है संसार, प फ ब भ म, एक बार चक्कर हो गया फिर क्या होता है, फिर से प प ब भ म, प फ ब भ म, इसको प वर्ग कहते हैं। ये संसार है, केवल परिश्रम ही परिश्रम। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में नहीं आएंगे, तब तक हमारे ये प फ ब भ म चलता रहेगा और चलते आ रहा है अनादिकाल से। इसलिए श्लोक में बताया जाता है, धर्म स्पनुष्ठ पुंसाम विश्वक्सेन कथा तुय न उत्पादयेद यति रति श्रम एव हि केवलम। श्री कृष्ण का और एक नाम है विश्वक्सेन। विश्वक्सेन कथा मतलब हरि कथा, कृष्ण कथा। भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, उनके गुणों के बारे में सुनना, उनके सुंदर रूप के बारे में सुनना, उनका उपदेश सुनना, उनका नाम का उच्चारण करना और सुनना, ये सब कृष्ण कथा है, हरि कथा। तो इन सब चीजों को हमें करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चीजों को करने से हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। तो ये जो हरि कथा के प्रति हमें रति या रुचि जागृत करनी चाहिए। उत्पाद ये यदि रति, रति मतलब आकर्षण। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्वधर्म का पालन किया, अपने घर कुटुंब का अच्छी तरह से देखभाल किया, और समाज में जितने भी कर्तव्य हैं उनको संभाला, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक किया उसने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के प्रति उसके मन में विश्वक्सेन कथा यह न उत्पादित रतिम यदि श्रम एव हि केवलम। तो अगर हमारे कार्यों से हम भगवान कृष्ण की कथाओं के प्रति आकर्षण जागृत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सारे कर्म व्यर्थ हैं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर एक महान वैष्णव कवि रहे, तो उन्होंने ये घोषणा की कि मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया लेकिन भगवान राधा कृष्ण का भजन मैंने नहीं किया, जानबूझकर मैंने विष खाया। क्या विष? ये संसार के भोग का विष। केवल संसार में मैं रमण करते रहा, मैंने सोचा कि यही सब कुछ है, कि यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सच्चा अमृत है। मैंने विष को पाया ये सोचकर कि ये अमृत है, और असली अमृत को छोड़ा ये छोड़कर ये सोचकर कि ये विष है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी इस विष को विष समझना चाहिए और छोड़ना चाहिए, और सच्चे अमृत को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण है सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षिति इति कृष्ण, सबका मन हरण करने वाले हैं हरि। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारा मन अमृत से भर जाएगा। कृष्ण कथा जिसके प्रति हमें रुचि जागृत करना है इस श्लोक के अनुसार, ये भी अमृत है। तो श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। बताया जाता है पिबन्ति ये, हमको पीना चाहिए भगवती आत्मनः सताम। आत्म सताम मतलब भगवान के भक्त जो साधु होते हैं, आत्मनः सताम मतलब भगवान भक्तों के प्राण हैं। तो ऐसे भगवान की जो कथा का अमृत है उसको हमें पीना चाहिए, ऐसे श्रीमद् भागवत में बताया जाता है। पिबन्ति ये भगवती आत्मनः सताम कथामृतम, ये कथा का अमृत, भगवान की कथा के अमृत का पान हमको करना चाहिए, पीना चाहिए। लेकिन कैसे पीना चाहिए? श्रवण पुटेशु संवृतम, श्रवण पुटेशु हमारे कर्णों से पीना चाहिए। हम भगवान की कथा का अमृत कानों से पी सकते हैं, और कैसे पीना चाहिए? संवृतम, कानों को भर भर के पीना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा प्यासा होता है और बहुत समय के बाद उसको पानी मिलता है, अमृत मिलता है पीने के लिए, तो कैसे पिएगा? आराम से एक एक घोट पिएगा, भर भर के पिएगा। ठीक उसी तरह से आत्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए तरस रही है, आत्मा कृष्ण कथा चाहती है, तो हमें कर्णों से भर भर के ये कृष्ण कथा का पान करना चाहिए। ऐसे कृष्ण कथा को, इसके अमृत को हमारे कानों से पीने से क्या लाभ मिलेगा? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, हमारे अंदर जो भी ये संसार के विष को पान करने की इच्छाएं हैं, अर्थात संसार का भोग करने की जो इच्छाएं हमारे अंदर हैं, पुनन्ति ते वो शुद्ध हो जाएंगे। हमारा हृदय भोग प्रवृत्ति से पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहांतिकम, फिर हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे भगवान के धाम को, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए। और जब भगवान के धाम में चले जाएंगे, वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह से छूट जाएंगे, सदैव भगवान के साथ में रहेंगे उनके धाम में उनकी सेवा करते हुए, और दिव्य आनंद की सदा प्राप्ति करेंगे, शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चार दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, ये हमारे जीवन की सच्ची सफलता है, हमारे जीवन का उद्देश्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी के कोई प्रश्न है? हाँ चल रहे हैं। हाँ एक माध्यम है, यंत्र है अवश्य। इसलिए हम शरीर को नकारते नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि शरीर को अति कष्ट दो, हम ऐसा नहीं कहते। थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, परंतु हम कहते हैं कि शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाओ भगवान श्री कृष्ण के। हमारे पास जो भी कुछ है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, इन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाने चाहिए, तब ये चीजें शुद्ध हो जाएंगी। जब हमारे धन को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, जब हमारे घर को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे हमारा घर शुद्ध हो जाएगा, हमारे कुटुंब को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे हमारा कुटुंब पवित्र हो जाएगा, जब हमारे शरीर इंद्रियां मन को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये भी चीजें शुद्ध हो जाएंगी। तो जो भी चीज भगवान से स्पर्श करता है वो शुद्ध हो जाता है। जैसे अगर एक लोहा है, उसको आपने अग्नि से स्पर्श कराया तो अग्नि के गुण उस लोहे में आ जाएंगे, लोहा भी गर्म हो जाएगा, फिर आप लोहा को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से जो भी चीज भगवान से स्पर्श में आती है वो भी चीज शुद्ध हो जाती है। तो अभी जब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं हमारा शरीर अशुद्ध रहता है, लेकिन जब हम तन मन धन से हर दृष्टि से मन काया वाचा हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। कायेन वाचा मनस इंद्रियैर्वा, अपने सोते जानते हैं ना, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हम समर्पित करते हैं हमारे मन को, काया को, वाचा को, सब भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस तरह से हमारी इंद्रियां भी हमारी मदद करती हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि आत्मा इन इंद्रियों को, इस शरीर का इस्तेमाल करती है भगवान की सेवा करने के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? द्वैत ये तो एक अलग विषय निकला, लेकिन संक्षेप में इतना ही बताया है कि द्वैत में यह बताया जाता है कि जीव हमेशा भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन अद्वैत में यह बताया जाता है कि जीव भी भगवान ही है। अद्वैतवाद में अंश को भी पूर्ण कहते हैं, लेकिन द्वैत में कहते हैं कि अंश अंश है और पूर्ण पूर्ण है। अंश कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है, अंश को हमेशा पूर्ण की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न ये है कि क्या केवल कृष्ण कथा सुनने से हमारे संसार की आसक्ति मिट सकती है, या कृष्ण का नाम का उच्चारण भी लेना है? जैसे हमने कहा प्रवचन में, कृष्ण कथा कई तरह से हो सकता है। कृष्ण का नाम सुनना ये भी कृष्ण कथा है, कृष्ण के गुणगान करना, कृष्ण के लीलाओं को सुनना, कृष्ण के उपदेश को सुनना, ये सब कृष्ण कथा है। तो इन सब को करने से हमें उद्धार, हमारा उद्धार हो सकता है। तो हमें इन सारे कार्यों को करना चाहिए, लेकिन इनमें से प्रमुख है भगवान का नाम लेना, क्योंकि ये कलयुग का युग धर्म है। ठीक है, इट्स द सेम, नॉन डिफरेंट। भगवान के नाम सुनने में और भगवान की कथा सुनने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मूल साधना नाम जप नाम कीर्तन है। इसलिए अन्य जो भी है ये भी हमारे रस बढ़ाती है नाम लेने। और कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि हम भगवान का नाम अगर लेंगे लेकिन सही तरह से नहीं लेंगे, अपराध युक्त नाम लेंगे, तो कई लाखों जन्म नाम लेने के बाद भी हम परम सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो क्या सेवा के बारे में भी ऐसे है कि हम सेवा करते हैं लेकिन सही भावना से अगर हमने सेवा नहीं की तो क्या ज्यादा समय लग जाएगा? अवश्य, क्योंकि भक्ति मार्ग ये भक्ति के ऊपर आधारित है। भक्ति मतलब भावना, चेतना। हम किस भावना से भगवान का नाम लेते हैं, किस भावना से हम सेवा करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। केवल सेवा करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेममयी सेवा करना ये सेवा है। तो सेवा का क्वालिटी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने बड़े नम्रता से, प्रेम से, भक्ति भावना से भगवान की सेवा कर ली तो हम बहुत जल्दी प्रगति कर पाएंगे, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सेवा किस भावना से करनी चाहिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जो भी भगवान कृष्ण के लिए करते हैं बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से करना चाहिए। प्रश्न ये है कि कोई काम करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, तो पहले भगवान की कृपा मिलती है फिर हम वो काम कर सकते हैं, काम करने के बाद भगवान की कृपा मिलती है? ये प्रश्न है ना। प्रश्न ये है कि कोई कार्य करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन जब वो हम कार्य करते हैं उसका फल मिलता है, हाँ, तो वो फल वो भी भगवान की कृपा है कि नहीं, ये प्रश्न है।
कृपा के बारे में, कृपा कैसा है, भगवान का कृपा कैसा मिलता है,
कैसे मिलता है? भगवान की कृपा तो हर क्षण में हमारे साथ में है। उंगली उठाने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, छोटा उंगली भी उठाने के लिए अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे उठा नहीं पाएंगे। तो छोटे छोटे कार्य करने के लिए भगवान की कृपा के ऊपर हम निर्भर हैं, तो बड़े काम करने के लिए कितना और निर्भर रहेंगे। तो जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हर क्षण भगवान की कृपा उसके ऊपर पहले से है और वो भगवान के प्रति आभार की भावना से रहता है, उसको कृपा अधिक प्राप्त हो जाती है। जब भगवान की कृपा को हम नकारेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान अपनी कृपा छीन लेते हैं। जब भगवान की कृपा को हम स्वीकार करेंगे कि हाँ हर क्षण में भगवान की कृपा हमारे साथ में है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करेंगे, जैसे कि उनका नाम का उच्चारण करना, उनके भक्तों की सेवा करना, तो और उनकी कृपा हमको मिल जाती है, विशेष कृपा भी मिल जाती है। ये आध्यात्मिक विषय के बारे में केवल नहीं है, भौतिक विषय के बारे में भी है। आपने जो तीसरी कक्षा में पढ़ा है आपको याद नहीं, लेकिन क्या तीसरी कक्षा में जो आपने पढ़ाई किया वो व्यर्थ है? क्योंकि तीसरी कक्षा में आप नहीं पढ़ते तो दसवीं में कैसे जाते, स्कूल से पास कैसे करते? उस समय आपके लिए वो महत्वपूर्ण था, चाहे अब इस समय आप उसको याद कर सकें या नहीं कर सकें, लेकिन क्योंकि आपने उतने अच्छे ढंग से पढ़ाई किया था उस समय, उस पढ़ाई ने आपको प्रगति करने के लिए मदद किया और उस चीज का लाभ आपके पास अभी भी है, लेकिन आप याद नहीं रख सकते। ठीक उसी तरह से भगवान के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, हो सकता है कि हमें बाद में थोड़ा याद रहे, थोड़ा याद नहीं रहे, लेकिन फिर भी जितना हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो वो शुद्धिकरण होता है हमारे हृदय का, हमारी श्रद्धा पक्का हो जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, निष्ठा बढ़ जाती है, भक्ति भावना बढ़ जाती है, ये फायदे तो हो जाते हैं। चाहे हमें याद रहें या नहीं रहें वो बुद्धि की बात है, स्मरण शक्ति की बात है, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण तो हो गया है। इसलिए चाहे हमें स्मरण रहे या नहीं रहे, हमें रोज भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, ऐसे भक्ति के ग्रंथों का अध्ययन और पाठ करना चाहिए। ठीक है। यही स्वभाव है संसार का कि जो याद करने लायक चीजें हैं उनको हम भूल जाते हैं और जिन चीजों को भूलना चाहिए हम उनको अच्छी तरह से याद रखते हैं। ये केवल इसीलिए है कि हमारा स्वभाव ऐसे बना है इस भौतिक संसार का संग अनादि काल से करने की वजह से। जब हमारा संग को हम बदलेंगे, भगवान का संग करेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बदल जाएगी। जिन चीजों को हमें भूलना चाहिए हम उसे भूल जाएंगे और जिन चीजों को याद रखना चाहिए उसको याद रख पाएंगे। प्रश्न ये है कि हम प्याज लहसुन चाय कॉफी क्यों नहीं लेते हैं? आज शाम को इसके बारे में चर्चा ज्यादा विस्तार में करेंगे। लेकिन चाय कॉफी ये नशीले पदार्थ है, नशा हो जाता है। आदमी को इतनी आदत पड़ जाती है चाय पीने की कि अगर सुबह उसको चाय नहीं मिलता तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब जानते हैं ना, चाय 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 करके तड़पता है, तो ये नशा है। वैसे भी हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं और समस्याओं को बढ़ाना क्यों चाहिए ऐसे अनावश्यक नशाओं को लेकर। और इसके अलावा चाय कॉफी से हमारी तबीयत भी खराब होती है, एसिडिटी ऐसी सब कई चीजें चाय कॉफी से हो जाती है, इसलिए हम चाय कॉफी नहीं लेते हैं। और प्याज लहसुन जो है ये रजोगुणी पदार्थ है। रजोगुणी पदार्थ होने के नाते हमारे मन की शांति को भंग करते हैं। भक्ति करने के लिए हमको मन शांत चाहिए, सात्विक मन चाहिए, इसलिए हमें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, केवल सात्विक विहार करना चाहिए, सात्विक कर्म करने चाहिए, सात्विक जगह में रहने चाहिए। लेकिन अगर हम सात्विक आहार नहीं ग्रहण करेंगे, राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करेंगे, तो हमारा मन भी राजसिक और तामसिक हो जाएगा, फिर हम स्थिरता से भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आहार का शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो शुद्ध आहार रखना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। किसी भी चीज को हमें अगर प्राप्त करना है तो एकाग्र चित्त से करना चाहिए। आधा इधर आधा उधर करने से ना इधर का हो जाएगा ना उधर का हो जाएगा। जब हमने भगवान की भक्ति का मार्ग पकड़ लिया तो पूरा पकड़ना चाहिए। और जो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है वो हमको करना चाहिए। चलता है क्या इंटर कास्ट मैरिज भक्ति मार्ग में? चलता है क्या? अवश्य चलता है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन एक ही कास्ट में अगर विवाह हो और उस विवाह से भक्ति नहीं हो तो ऐसे विवाह का क्या फायदा? और अगर इंटर कास्ट मैरिज हो और उसमें दोनों भगवान कृष्ण के भक्त हो और दोनों अपना जीवन सफल करा देते हैं तो उसमें कौन सा नुकसान की बात है? इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति मार्ग के लिए इंटरकास्ट मैरिज कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर हो भी जाए और अगर दोनों कृष्ण भक्त हैं और बड़े अच्छे ढंग से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं। ठीक है, एक ही जाति में विवाह हो गया लेकिन भक्ति नहीं हुई तो वही होगा जैसे आज के श्लोक में बताया है, श्रम ये वही केवलम, कुछ लाभ नहीं होगा उसका। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी कभी बताया जाता है कि मनुष्य के जीवन की अवधि इतनी है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर कोई प्रामाणिक ज्योतिष हो तो वो बता पाएगा, लेकिन आजकल प्रामाणिक लोगों को पाना बहुत कठिन है। और वैसे भी भक्ति मार्ग में हम लोग ज्यादा इन चीजों के बारे में परवाह नहीं करते हैं। अगर भगवान ने हमारे लिए लंबी आयु रखी है ठीक है, भगवान ने हमारे लिए कम आयु रखी है तो भी ठीक है, आखिर शरीर भी उनका है,
जब उनकी इच्छा है कि शरीर नष्ट करना है करेंगे, तो भक्त ज्यादा इसके बारे में परवाह नहीं करता है। हरे इच्छा हाँ, संसार चक्र से बाहर निकलने के लिए समय लगता है, वो सही है। इसलिए आप कौटुंबिक जीवन में रहते हुए भी आप भक्ति कर सकते हैं, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कौटुंबिक जीवन में रहकर भी अगर आपके घर को ही आप वैकुंठ बनाएंगे भक्तों के